एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं जो सिर्फ कलाकारों या लेखकों के लिए नहीं है। ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने अंदर की आवाज़ सुनकर कुछ बड़ा करना चाहता है पर कहीं कहीं अटक सा जाता है।
हाँ बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं स्टीवन प्रेसफील्ड की जबरदस्त किताब द वॉर ऑफ आर्ट की, कला का युद्ध।
हाँ, कला का युद्ध। और ये किताब उस अनदेखी लड़ाई के बारे में है जो हम सबके अंदर चलती है ना?
सही कहा, वो लड़ाई जो हमें कुछ नया शुरू करने से या अपनी सेहत सुधारने से या बस अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने से कहीं ना कहीं रोकती है।
और आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में जहाँ हर कोई कुछ बनना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई हमें रोकता कौन है।
और जवाब जैसा आपने कहा चौंकाने वाला है, अक्सर हम खुद।
तो आज का हमारा मिशन यही है, प्रेसफील्ड के इस आइडिया को, इस विचार को थोड़ा और कुरेदें। ये कौन सी अंदरूनी ताकत है जिसे वो प्रतिरोध कहते हैं,
रेजिस्टेंस,
और उससे लड़ने के लिए ये पेशेवर वाली सोच क्या है, प्रोफेशनल माइंडसेट।
हाँ, कैसे हम सिर्फ सपने देखने वाले शौकिया मतलब एमेच्योर से हटकर असल में काम पूरा करने वाले पेशेवर बन सकते हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं।
जरूर। तो शुरुआत करते हैं लेखक से ही।
जी जी,
स्टीवन प्रेसफील्ड।
जी,
ये कोई कोई एकेडमी या प्रोफेसर नहीं है जो बस सिद्धांत बनाते हो।
हाँ मतलब आराम कुर्सी पर बैठकर थ्योरी नहीं दे रहे हैं।
बिल्कुल नहीं, ये वो सिपाही हैं जो खुद इस जंग के मैदान में उतरे हैं सालों साल। बेस्ट सेलर लेखक बनने से पहले उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, ट्रक चलाना, बार में काम करना,
विज्ञापन लिखना, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने।
हाँ, और सबसे दिलचस्प बात शायद ये है कि उन्हें अपनी पहली नॉवल पूरी करने में लगभग 30 साल लगे। 30 साल, सोच सकती हूँ, मतलब 30 साल तक वो उसी चीज से जूझते रहे जिसे वो प्रतिरोध कह रहे हैं।
एग्जैक्टली।
तो जब वो इसके बारे में लिखते हैं तो वो सिर्फ बातें नहीं कर रहे होते हैं,
वो अपना भोगा व सच बता रहे होते हैं।
और उनका अनुभव सिर्फ लिखने तक ही सीमित नहीं है ना। उन्होंने पटकथा लेखन, विज्ञापन, फिर ऐतिहासिक उपन्यास लिखे हैं, गेट्स ऑफ फायर, द लेजेंड ऑफ बैगर वैंस, ये सब।
हाँ, और इसी वजह से मेरा मानना है उनकी बातें किताबी नहीं लगती, वो रचनात्मक काम को किसी रोमांटिक ख्वाब की तरह नहीं देखते।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो इसे एक युद्ध की तरह देखते हैं जिसमें अनुशासन चाहिए, रणनीति चाहिए।
सही, जैसे कोई सैनिक रोज अभ्यास करता है ना, ड्रिल करता है, वैसे ही उनका कहना है कि क्रिएटिव इंसान को भी रोज मैदान में उतरना पड़ता है। उनकी जो समझ है वो कड़ी मेहनत से कमाई हुई है, किसी थ्योरी से नहीं आई है।
सही कहा, वो सिद्धांतों से नहीं बल्कि उस अंदरूनी जंग के अपने तजुर्बे से बात करते हैं, इसीलिए उनकी सलाह इतनी इतनी सीधी, सच्ची और असरदार लगती
तो
है।
अब आते हैं किताब पर, द वॉर ऑफ आर्ट। ये एक तरह की कह सकते हैं एक हैंडबुक है।
हैंडबुक किसके लिए?
उन सबके लिए जो कुछ मायने रखने वाला काम करना चाहते हैं, चाहे वो किताब लिखना हो, कोई बिजनेस शुरू करना हो या अपनी सेहत ही सुधारनी हो, लेकिन वो खुद को टालमटोल करते हुए पाते हैं, शक करते हैं, अपने ही रास्ते में रोड़ा बनते हुए पाते हैं।
और किताब का जो सबसे बड़ा या कहूँ सबसे चौंकाने वाला आइडिया है वो ये है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है।
हाँ, प्रेसफील इसी अंदरूनी दुश्मन को प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस।
और ये सिर्फ आलस नहीं है या मूड ना होना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है।
बहुत ज्यादा, ये एक सक्रिय, चालाक और बहुत शक्तिशाली ताकत है जो हमें हमारी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। ये उस सवाल का जवाब है जो हम अक्सर खुद से पूछते हैं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है पर मैं कर क्यों नहीं पा रही।
और प्रेसफील्ड इस जंग को समझने और जीतने का रास्ता 3 हिस्सों में दिखाते हैं, है ना?
हाँ, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है दुश्मन को पहचानो, ये प्रतिरोध है क्या, बला कैसे काम करता है।
ठीक है।
दूसरा हिस्सा, हथियार उठाओ, इससे लड़ने के लिए पेशेवर कैसे बने।
ओके, प्रोफेशनल बनना।
और तीसरा हिस्सा, आगे बढ़ो, प्रतिरोध से परे जाकर उस बड़ी रचनात्मक शक्ति से कैसे जुड़ें जिसे वो म्यूज कहते हैं।
अच्छा,
तो चलिए पहले दुश्मन को ही ठीक से समझे, ये प्रतिरोध आखिर है क्या चीज। प्रेसफील्ड एक बड़ी गहरी बात कहते हैं कि हम सबके 2 जीवन होते हैं।
2 जीवन कैसे?
एक वो जो हम जी रहे हैं और दूसरा वो वो अनजीता जीवन जो हम जी सकते थे अगर हम प्रतिरोध के आगे घुटने ना टेकते। वाह, अनजीता जीवन मतलब द अनलिव्ड लाइफ।
हाँ, और ये प्रतिरोध तब सिर उठाता है जब भी हम कुछ बेहतर करने की कोशिश करते, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलने की सोचते हैं।
हाँ, ये अनजीता जीवन वाली बात, कई बार लगता है ना कि हम अपनी ही परछाई से लड़ रहे हैं, जैसे पता है क्या करना है पर कर नहीं पा रहे।
बिल्कुल।
और इसके लक्षण बड़े पहचाने से हैं। ये दिखता नहीं है पर महसूस होता है, अंदर ही अंदर काम करता है, बहुत चालाक है।
चालाक कैसे?
आपको लगेगा ये आपकी ही सोच है, आपके अपने विचार हैं, पर वो असल में प्रतिरोध होता है, और ये किसी एक का दुश्मन नहीं, सबका है, और ये हर किसी पर एक जैसा हमला करता है, इम्पर्सनल है।
और सामने कैसे आता है, मतलब लक्षण क्या है? सबसे आम रूप तो शायद टाल मटोल है, प्रोक्रास्टिनेशन।
हाँ बिल्कुल, कल करूंगा, अभी मूड नहीं है, थोड़ी देर में, ये सब प्रतिरोध की भाषा है। फिर आता है आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट।
मुझसे नहीं होगा, मैं काफी अच्छी नहीं हूं, इस तरह की बातें।
एग्जैक्टली, डर भी इसी का हथियार है, असफलता का डर, सफलता का डर, लोगों की राय का डर, सब कुछ।
और बड़े बड़े कन्विंसिंग बहाने देता है। अचानक आपको याद आएगा कि अरे घर की सफाई बहुत जरूरी है अभी, या कोई पुराना दोस्त याद आ जाएगा जिससे बरसों में बात नहीं की पर आज करनी ही है।
हाँ, या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की वो तलब, ये सब प्रतिरोध के भटकाने के तरीके हैं। प्रेसफील्ड एक और मजेदार बात कहते हैं
क्या?
कि दूसरों से सलाह मांगते रहना बार बार, ये भी कई बार काम ना करने का एक तरीका होता है। हमें लगता है हम तैयारी कर रहे हैं पर असल में हम काम टाल रहे होते हैं।
अरे हाँ, ये तो बहुत होता है। मेरा घर भी सबसे ज्यादा साफ तभी होता है जब कोई बड़ी डेडलाइन नजदीक हो। ये प्रतिरोध सच में बड़ा शातिर है।
है ना? लेकिन प्रेसफील्ड एक बहुत जरूरी नुक्ता बताते हैं, प्रतिरोध अचूक है, इनफैलिबल।
अचूक? इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब यह है कि जिस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है या जिसे आप सबसे ज्यादा टाल रहे हैं, लगभग तय है कि वही काम आपके लिए, आपकी आत्मा के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
अच्छा।
हाँ, प्रतिरोध एक कंपास की तरह है जो हमेशा आपके असली लक्ष्य, आपके ट्रू नॉर्थ की तरफ इशारा करता है, बस उल्टी दिशा में।
मतलब जहां सबसे ज्यादा प्रतिरोध महसूस हो, समझ लीजिए खजाना वहीं गड़ा है।
बिल्कुल, आप डर या टालमटोल को एक एक गाइड की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये तो कमाल की बात है। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि हमारा आलस या डर असल में हमारी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षाओं का नक्शा हो सकता है, बस उसे उल्टा पढ़ना है।
हाँ, और प्रेसफील्ड ये भी कहते हैं कि प्रतिरोध सिर्फ आलोचना से नहीं, तारीफ से भी हमें भटका सकता है। सफलता मिलने पर हमें आराम पसंद बनाकर रोक सकता है।
और सबसे ज्यादा खतरनाक कब होता है?
जब हम मंजिल के बिल्कुल करीब होते हैं, तब ये पूरी ताकत से हमला करता है।
उफ, तो ये सिर्फ लिखने पढ़ने या कला तक सीमित नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई नई डाइट शुरू करना चाहते हैं, प्रतिरोध आएगा। रोज कसरत करना चाहते हैं, प्रतिरोध आएगा। कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं, प्रतिरोध खड़ा हो जाएगा। कोई भी काम जो हमें हमारे बेहतर स्व की तरफ ले जाता है, प्रतिरोध को उकसाता है।
तो ये है दुश्मन। अब सवाल है इसे लड़ा कैसे जाए?
यहीं पर किताब का दूसरा हिस्सा आता है, पेशेवर बनना, बिकमिंग अ प्रो।
हाँ, पेशेवर बनना। और प्रेसफील्ड साफ करते हैं कि इसका मतलब नौकरी या पैसे से नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक एक एता दिस्प्री है, एक मानसिकता, एक नजरिया है। शौकिया यानी एमेचर और पेशेवर यानी प्रोफेशनल में यही फर्क है।
क्या फर्क है?
शौकिया तब काम करता है जब मन होता है, जब प्रेरणा आती है, इंस्पिरेशन।
और पेशेवर?
पेशेवर वो रोज काम पर बैठता है, चाहे मन हो या ना हो, चाहे प्रेरणा हो या जीरो, वो बस बैठ जाता है।
और ये फर्क तो जमीन आसमान का है।
बहुत बड़ा फर्क है। शौकिया मजे के लिए खेलता है, अगर मजा आना बंद हो गया तो वो खेल छोड़ देता है। पेशेवर जीतने के लिए खेलता है। प्रेसफील्ड कहते हैं प्लेस फॉर कीप्स।
मतलब उसके लिए ये काम सिर्फ शौक नहीं बल्कि उसकी पहचान है, उसकी जिम्मेदारी है।
हाँ, शौकिया दूसरों की तारीफ चाहता है, बाहरी वैलिडेशन। उसका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका होता है।
और पेशेवर?
पेशेवर का आत्मसम्मान उसके काम से आता है। वो जानता है उसने आज अपना काम किया या नहीं, बस।
तो इस पेशेवर की पहचान क्या है, मतलब लक्षण क्या है?
सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, रोजाना हाजिर होना, शोइंग अप।
मतलब तय समय पर अपने काम के लिए बैठ जाना, चाहे लिखने का मन ना हो, चाहे कसरत करने का दिल ना करे, बस बैठ जाना।
बिल्कुल, प्रेसफील्ड कहते हैं आधी जंग यहीं जीत ली जाती है, चाहे पजामा पहनकर ही बैठना पड़े पर बैठो जरूर।
हाँ, ठीक है, और
दूसरी बात, पेशेवर लंबी दौड़ के लिए खेलते हैं। वो हफ्तों या महीनों में नहीं सोचते, सालों और दशकों में सोचते हैं। उन्हें पता है कि किसी भी चीज में महारत हासिल करने में वक्त लगता है।
रातों रात सफलता के पीछे नहीं भागते।
नहीं।
तीसरी बात, डर। पेशेवर भी डरते हैं, बहुत डरते हैं।
ब्रेसफील्ड महान एक्टर हेनरी फोंडा का उदाहरण देते हैं। वो सालों तक हर परफॉर्मेंस से पहले उल्टी करते थे।
सच में?
हाँ, लेकिन फिर भी स्टेज पर जाते थे हर बार। तो पेशेवर डर के बावजूद काम करते हैं।
और वो बहाने नहीं बनाते, न सुनते हैं न देते हैं।
सही। वो असफलता या सफलता को दिल पर नहीं लेते। आज काम अच्छा हुआ, ठीक है। आज काम बुरा हुआ, ठीक है, कल फिर बैठना है। उनका ध्यान प्रक्रिया पर होता है, नतीजे पर उतना नहीं।
क्या मैंने आज अपना काम किया? हाँ, बस इतना काफी है।
और एक और अहम बात, पेशेवर अपने हुनर को मांझते हैं। वो सिर्फ प्रेरणा के भरोसे नहीं रहते, वो अपनी कला, अपने काम की तकनीक सीखते हैं, अभ्यास करते हैं।
जैसे एक संगीतकार रोज रियाज करता है, एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करता है।
एग्जैक्टली। और वो अपने लिए एक एक कार्य क्षेत्र बनाते हैं, टेरिटरी, काम करने की एक खास जगह, एक खास समय जो उनके लिए पवित्र होता है। ये उन्हें फोकस करने और प्रतिरोध को दूर रखने में मदद करता है।
तो ये पेशेवर रवैया ही प्रतिरोध से लड़ने का मुख्य हथियार है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि अनुशासन, प्रतिबद्धता और रोज की मेहनत है।
बिल्कुल। तो ये दुश्मन है प्रतिरोध और हथियार है पेशेवर रवैया। लेकिन फिर किताब का तीसरा हिस्सा किस बारे में है? प्रतिरोध से परे उच्च क्षेत्र, ये क्या है?
हाँ, ये हिस्सा, ये थोड़ा सा दार्शनिक या कहले आध्यात्मिक सा लगता है, पर प्रेसफील्ड इसे भी बहुत व्यावहारिक तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है कि जब हम एक पेशेवर की तरह अनुशासन के साथ रोज अपना काम करते हैं, तो हम अकेले नहीं रह जाते।
अकेले नहीं रह जाते,
मतलब कुछ और शक्तियां, कुछ मदद हमारी सहायता के लिए आ जाती हैं।
आप म्यूज की बात कर रहे हैं, वो देवीय प्रेरणा वाली बात। कई लोग इसे अंधविश्वास मान सकते हैं।
मान सकते हैं, लेकिन प्रेसफील्ड कहते हैं ये अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक अनुभवजन्य सच्चाई है, एम्पेरिकल रियलिटी। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े कलाकारों, वैज्ञानिकों, लेखकों ने इसे महसूस किया है। लेकिन चाबी ये है।
चाबी क्या है?
चाबी ये है कि प्रेरणा काम शुरू करने का इंतजार नहीं करती, बल्कि प्रेरणा रोज काम करने का इनाम होती है, रिवॉर्ड।
अच्छा, मतलब पहले काम फिर प्रेरणा।
हाँ, जब आप रोजाना मैदान में उतरते हैं, तो आप खुद को उस मदद के लिए खोल देते हैं। आप यूनिवर्स को दिखाते कि आप सीरियस हैं, आप खेलने नहीं आए हैं।
ये दिलचस्प है। मतलब पहले कर्म फिर फल, प्रेरणा के रूप में। प्रेसफील्ड यहाँ अहंकार और स्व का जिक्र भी करते हैं ना, ईगो और सेल्फ।
हाँ बिल्कुल। अहंकार हमारा वो हिस्सा है जो डरता है, बहाने बनाता है, दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहता है। प्रतिरोध इसी अहंकार के खेल का हिस्सा है।
और स्व यानी सेल्फ?
स्व हमारा गहरा सच्चा रूप है, जो रचनात्मकता, उद्देश्य और शायद किसी बड़ी शक्ति से जुड़ा है। पेशेवर का काम है अहंकार को चुप कराना, ताकि ये गहरा स्व सामने आ सके और अपना काम कर सके।
तो ये एक तरह से अपने काम को सिर्फ काम नहीं, बल्कि एक एक साधना, एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह देखना है।
बिल्कुल। चलिए अब इस पूरी चर्चा के कुछ कुछ मुख्य संदेशों को समेटते हैं, क्या कहते हैं?
हाँ जरूर।
पहला और मेरे लिए तो सबसे जरूरी, प्रतिरोध एक सार्वभौमिक शत्रु है। ये कोई आपकी निजी कमी या कमजोरी नहीं है, ये एक बाहरी ताकत है जिसे पहचाना जा सकता है और जिससे लड़ा जा सकता है। इसे जानना ही मतलब सच में बहुत बड़ी राहत है।
हाँ, ये समझना कि ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, हम सभी से रोज महसूस करते हैं। सुबह उठने में आलस, जरूरी फोन कॉल टालना, कोई नया कोर्स शुरू करने से हिचकना, ये सब प्रतिरोध है।
दूसरा बड़ा सबक है पेशेवर बनाम शौकिया मानसिकता का फर्क।
हाँ, सफलता का असली राज सिर्फ टैलेंट या मूड में नहीं है, वो रोज टिके रहने में है, अनुशासन में।
और ये जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। सोचिए, हम अपनी नौकरी, अपनी सेहत, अपने रिश्तों को किस नजरिए से देखते हैं, शौकिया या पेशेवर? क्या हम सिर्फ तब कोशिश करते हैं जब मन करता है, या हम रोज मैदान में उतरते हैं?
तीसरा संदेश जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, डर एक दिशा सूचक है।
हाँ, जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगे, जिसे करने से पेट में गुड़गुड़ हो, बहुत मुमकिन है कि वही चीज आपके विकास के लिए सबसे जरूरी है।
वो डर असल में हमें खजाने का नक्शा दिखा रहा है, बस हमें उसे पढ़ना सीखना होगा। वो कौन सी बातचीत है जिसे हम टाल रहे हैं, वो कौन सी जिम्मेदारी है जिससे हम कतरा रहे हैं, शायद वही हमारा अगला कदम है।
चौथा संदेश थोड़ा अलग है, काम क्षेत्रीय है, पदानुक्रमित नहीं। टेरिटोरियल वर्सेस हायरार्कियल।
इसका क्या मतलब है, थोड़ा समझाएंगे?
इसका मतलब है कि अपना ध्यान बाहरी चीजों पर, जैसे अवार्ड, प्रमोशन, दूसरों की तारीफ, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब पदानुक्रमित हैं। इनसे हटाकर अपने काम की गुणवत्ता, अपने हुनर को बेहतर बनाने पर, जो कि क्षेत्रीय है, उस पर लगाना चाहिए।
अच्छा, मतलब क्या हम अपने खेल को बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहे हैं क्षेत्रीय, या सिर्फ स्कोरबोर्ड पदानुक्रमित पर टकटकी लगाए हैं? आज की दुनिया में ये बहुत जरूरी है समझना।
बहुत जरूरी। और पांचवा, रचनात्मकता एक आध्यात्मिक अभ्यास है। जब हम अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, तो ये सिर्फ बाहरी सफलता नहीं लाता, बल्कि हमें अपने अंदर के गहरे उद्देश्य और शायद किसी बड़ी शक्ति से भी जोड़ता है।
ये काम को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि जिंदगी को अर्थ देने वाला माध्यम बना सकता है।
बिल्कुल। और ये सारे सिद्धांत सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। कोई स्टूडेंट हो, कोई बिजनेसमैन, कोई हाउसवाइफ, हर कोई इन विचारों से कुछ ना कुछ सीख सकता है।
हाँ, टालमटोल से लड़ना, अनुशासन बनाना, डर का सामना करना, ये तो हम सबको करना पड़ता है रोज।
और ये किताब ऐसी ऐसी धारदार पंक्तियों से भरी है जो सीधे दिलो दिमाग पर असर करती हैं। कुछ याद रह जाने वाली बातें शेयर करें।
हाँ, क्यों नहीं। पहली, कला के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात काम करना है। हर दिन बैठकर कोशिश करने के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता।
कितना सीधा और सच्चा, कोई बहाना नहीं चलेगा, बस काम करो।
हाँ, ये बिल्कुल आईना दिखा देती है। दूसरी पंक्ति, जितना अधिक महत्वपूर्ण कोई आह्वान या कार्य हमारी आत्मा के विकास के लिए होता है, उतना ही अधिक प्रतिरोध हम उसे करने के प्रति महसूस करेंगे।
ये वही डर को कंपास बनाने वाली बात। ये याद दिलाती है कि मुश्किल रास्ते ही अक्सर सही मंजिल तक ले जाते हैं।
सही। और ये वाली मेरी पसंदीदा है, लिखना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है लिखने के लिए बैठना।
हाँ, असली लड़ाई कुर्सी तक पहुंचने की है। एक बार बैठ गए तो गाड़ी चल पड़ती है ज्यादातर समय।
बिल्कुल। और चौथी, शौकिया मजे के लिए खेलता है, पेशेवर जीतने के लिए खेलता है।
ये सिर्फ रवैये का नहीं, बल्कि प्रतिबद्धता के स्तर का फर्क दिखाता है, कमिटमेंट का।
हाँ, पेशेवर के लिए ये खेल नहीं, जंग है। ये पंक्तियां वाकई सोचने का नजरिया बदल सकती हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इन सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारें कैसे, प्रैक्टिकल टिप्स।
हाँ, ये जरूरी है। पहली चीज है एक रोज का अभ्यास तय करना, छोटा सा ही सही पर रोज। 15 मिनट लिखना, आधा घंटा कोई स्किल सीखना, 20 मिनट मेडिटेशन, कुछ भी।
नियम यह है, रोज करना है।
Yeah.
कंसिस्टेंसी इज की।
दूसरा, प्रतिरोध को पहचानना सीखें। जैसे ही टालमटोल का मन करे या कोई बहाना दिमाग में आए, रुककर सोचें, अरे ये तो प्रतिरोध है।
उसे अपनी कमी मानने के बजाय दुश्मन की तरह पहचाने।
हाँ,
पहचानते ही उसकी ताकत आधी हो जाती है, फिर आप उससे लड़ सकते हैं। तीसरा, हर जरूरी काम में पेशेवर बने। अपनी नौकरी, पढ़ाई, सेहत, रिश्ते, जहां भी आपको लगातार कोशिश करनी है, वहां शौखिया रवैया छोड़ें। मूड का इंतजार ना करें, अनुशासन अपनाएं।
रोज थोड़ा ही सही पर करें जरूर।
चौथा, डर को दोस्त बनाएं। जब डर लगे तो भागने की बजाय पूछें, ये डर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है। हो सकता है डर के उस पार ही आपका अगला लेवल हो।
और हाँ, लंबी सोच रखें, रातों रात कुछ नहीं बदलता, है ना?
बिल्कुल नहीं। चाहे करियर हो, सेहत हो, या कोई हुनर सीखना हो, सालों के हिसाब से सोचें। इससे छोटी मोटी असफलताओं से निराशा नहीं होगी।
और आखिर में एक सिस्टम बनाएं। काम करने का एक तय समय, एक तय जगह। ये आदतें प्रतिरोध के लिए दीवार खड़ी कर देती हैं।
सोचिए, कोई व्यक्ति है जो महीनों से अपना वजन कम करना चाह रहा है पर कर नहीं पा रहा, वो इन सिद्धांतों को कैसे इस्तेमाल कर सकता है?
अच्छा उदाहरण है। पहले वो पहचानेगा कि ये टालमटोल प्रतिरोध है, उसकी अपनी कमी नहीं। फिर वो पेशेवर की तरह रोज सुबह सिर्फ 15 मिनट वॉक पर जाने का नियम बनाएगा, चाहे मौसम कैसा भी हो, मूड कैसा भी हो।
डर लगेगा, लोग क्या सोचेंगे, मुझसे नहीं होगा, पर वो फिर भी जाएगा।
हाँ, वो एक खास वक्त और रूट को अपना कार्यक्षेत्र बना लेगा। धीरे धीरे रोजाना ऐसा करने से प्रतिरोध हारेगा और सेहत सुधरेगी। छोटी शुरुआत पर लगातार।
इस किताब से मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये रही कि प्रतिरोध को एक बाहरी दुश्मन की तरह देखने से कितना कितना फर्क पड़ता है। खुद को कोसने की बजाय हम एक रणनीति बना सकते हैं, ये बहुत एम्पावरिंग है।
और मेरे लिए वो पेशेवर वाली मानसिकता सबसे असरदार रही, ये सोचना कि प्रेरणा का इंतजार मत करो, बस काम शुरू कर दो, प्रेरणा खुद आ जाएगी, ये सच में गेम चेंजर है।
और काम को सिर्फ काम न समझकर एक साधना की तरह देखना, ये भी बहुत गहरा विचार है।
तो आज के चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए सोचने की बात ये है, आपकी जिंदगी में प्रतिरोध कहाँ दिख रहा है? वो कौन सा जरूरी काम है, कौन सा अनजीता जीवन है जिसे आप टाल रहे हैं? और आज अभी आप पेशेवर की तरह मैदान में उतरने के लिए वो पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं? मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।